सत्संग जी प्रेम से कहना, सत्संगत बहुत खुशी हो रही है यहाँ फिर से एरिजोना फिनिक्स में आकर आप सभी के दर्शन करने का जो मौका मिला है। जैसे आप सभी जानते हैं कि पिछली बार 2009 में यहाँ आने का मौका मिला था और करीब 6 बरस बीत गए, इस दौरान यहाँ फिर से आने का अवसर नहीं बन पाया। तो इस यात्रा के दौरान जहाँ अन्य स्थानों पर जाने का मौका मिल रहा है, वहाँ पर फिनिक्स में आकर आप सभी के साथ ये घड़ियाँ बिताने को मिल रही हैं। सत्संग के रूप में आप सभी उपस्थित हैं। इस निराकार पारब्रह्म परमात्मा का जहाँ यशोगान हो रहा है और इसी से संसार भर के लिए भलाई की कामनाएं की जा रही हैं, जैसा कि सदैव संतों महात्माओं ने संसार के लिए प्रार्थनाएं की हैं कि सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण, कि सारे संसार को अपना जानते हुए मानते हुए हर किसी का भला ही महापुरुषों ने मांगा है और यही सोच हर किसी को प्रदान करने के लिए, ऐसी अवेयरनेस हर किसी में लाने के लिए वलियों गुरु पीर पैगंबरों ने अपने जीवन में प्रयास किए कि इंसान इस बात को समझ जाए कि सारे संसार के इंसान उसके अपने ही परिवार का अंग हैं। जो परिवार खुदा मालिक परमात्मा ईश्वर परमपिता का है और इसलिए आज भी उसी पहलू की तरफ सभी ध्यान अग्रसर करा रहे थे। जिस जिस को भी बोलने का मौका मिला है, चाहे छोटे से बच्चों की भावनाएं आपने श्रवण की, नौजवानों की बुज़ुर्गों की, हर किसी में यही एक संदेश, उत्तम संदेश ये दोहराया जा रहा था, ये पैगाम दोहराया जा रहा था। दोहराया जा रहा था का मतलब कि रिपीट किया जा रहा था। और रिपीट क्यों किया जाता है, क्यों ज़रूरत पड़ती है बार बार दोहराने की? ज़रूरत तब पड़ती है जब वो कार्य अभी पेंडिंग हो, अभी ना हुआ हो, उसको और ज़्यादा मजबूती मिले, तो इसलिए उसको बार बार दोहराना पड़ता है। और केवल कुछ सालों की बात नहीं है, युगों युगों से दोहराना पड़ा है। सतयुग में बात कही गई, त्रेता में दोहरानी पड़ी, द्वापर में भी दोहरानी पड़ी और कलयुग में भी दोहरानी पड़ी। भिन्न भिन्न रूपों में वलि गुरु पीर पैगंबर इस संसार में अवतरित होते रहे और उनको यही संदेश देना पड़ा, यही एकत्व का, वननेस का, भाईचारे का, मिलवर्तन का, रियलाइजेशन का, मेल जोल का, एक दूसरे के प्रति सद्भाव का, एक प्यार से जीवन के सफ़र को तय करने का। तो ये बार बार ये संदेश देना पड़ा है और पड़ता है, क्योंकि इंसान ऐसी भावना से युक्त होता नहीं है आसानी से, ऐसा नज़रिया उसका बनता नहीं है आसानी से। इसीलिए आज भी वही संदेश दोहराया जा रहा था और कितने सुंदर ढंग से आपके समक्ष यही पहलू लाया गया, जिस जिसको भी बोलने का मौका मिला। सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी हेयर वंस अगेन इन फिनिक्स एरिजोना आफ्टर गैप ऑफ अराउंड 6 ईयर्स व्हेन आई लास्ट विजिटेड। एंड दो आई हैव बीन विजिटिंग United States in 2011 also and 2013 also and last year 2014 I did visit America, but just in Boston, where we had 2-day large congregation at Dunkin' Donuts in Providence, Boston, and I couldn't visit any other place. So with God's grace, I got a chance to be here in Phoenix and meet you all, spend some time with you all in the form of this congregation where we all sitting together, praising the Lord God Almighty, and praying to God Almighty that may good sense prevail, may such wisdom prevail so that this mankind doesn't fight each other and they live peacefully, harmoniously. You listen to the words of wisdom from the worthy mayor of Mesa, and he also gave the same message of goodwill, and I thank him for his love and the acknowledgement of the works which the mission is doing. And I am very happy to have him here present, and together we are praising this God Almighty, and the strong message of oneness, of brotherhood is being conveyed. Even Mr. Bruce Gardner, he also spoke the words of wisdom which are based on the teachings of saints and sages and prophets since time immemorial. And also Mr. Taylor, he also so nicely depicted, beginning from our households, from our families, how we have to have harmonious relations, how we have to care for each other and share with each other, how we have to be not insensitive about the feelings of others, and be always involved in the works of the family, a well-knit family, sharing the pains and laughters of others. So from the individual unit, the journey starts. The first individual, I myself, and then my family, and then it enlarges to the society, then to the nation, and then it crosses even the boundaries of nations and engulfs the whole world. So that was the outlook of the saints and sages. That's what they taught. What we are doing is just following certain rituals, rites and dogmas, and the essence of the teaching is evaporating. We are not grasping it, we are not adapting it, we are not following it. That's why we are seeing so much hatred. Lord Jesus Christ's teachings are based on love, compassion, tolerance. Where is the tolerance? Where is love? Where is compassion? For that matter, of all the saints, Prophet Muhammad, Shri Guru Nanak Dev Ji Maharaj, Lord Rama, all the saints and sages, they taught us to love each other, to be tolerant. The differences which we have, as was mentioned earlier in this congregation, unity in diversity. God's creation is in a diverse form, what we are seeing. As I often mention that the universe, the creation of God, the planetary system, the planets, Earth is different from Sun, Sun is different from Moon, Moon is different from Jupiter. And here on Earth itself, there are mountains. Mountains are not like deserts, and deserts are not like oceans. So many colors we have, so many species we have, so many languages we have, so many mode of diet and dresses we have, so many cultures we have. So there is so much diversity. The need is not of uniformity, but of unity. A beautiful mosaic, beautiful tapestry, the cloth which is knit by different color of thread, but part of that one sheet or one row. So that's what is the message of the mission, which is based on the message of all the saints and sages and prophets. The hatred part which we are seeing today in the world, such heinous crimes are being committed. Innocent people are put to death. So much warfare, violence. Violence in thoughts, violence in speech, violence in action. So that's what is happening. Saints wanted that this earth should become heaven. As we often say that heaven on earth, we feel that that moment, at that time, at that place, when we emit love and we create an atmosphere of love and care for each other. So that's the place and moment when we say it's heaven on earth. So similarly, whole of earth, where all the nations are, whole earth becomes heaven. Like we often say, swarg, jannat, ye dharti jannat ban jaye, ye swarg ban jaye. That's only possible if there is love for each other. And we shed the narrow-mindedness and we embrace each and everybody, irrespective of one's caste, creed, color, religion, nationalities, etc. So that's oneness. We have to be centered on this oneness, the oneness of God. And even our bodies are composition of five elements. There two are common. The five elements, the composition of our bodies are by these five elements. Our skin color may differ, but the elements remain the same. Whether one is born in India or in America or China, Canada, anywhere, Middle East, whether one speaks any language. So at that point also there is oneness on the basis of the five common elements. The soul from the oversoul, once again oneness. So it is the ignorance part, the darkness of ignorance, because of which we are drifting away from each other. And our outlook has become such, which has become a reason for always looking down upon others and separating them from ourselves. And this poisonous or vicious feeling and thoughts, we often spread it, and we do not even spare small children. You have listened to so many news, you have come across that even small children's minds are, we make them vicious, make them narrow-minded. Innocent children play with each other, they sit together. One incident which I often quote once, although it happens so many times at so many places, but one incident, parents of a son, they desire to go to the school where their child goes and studies. They wanted to see how the classroom is and how the atmosphere is. So they requested the principal, headmaster, and headmaster allowed them and said that, "I do not want the class to be disturbed. You just stand in the veranda and through the door you see the classroom, because the class will be on at that time, period will be on at that time." So the parents, they arrived at the school and Right outside the classroom, they stood by the door outside, seeing their son sitting. And after spending 5 minutes, they came out, returned to the home. And when the school finished and their son came back to home, what the father says to his son, "That son, we visited you, you didn't notice us, but we were seeing you studying. We were outside your class, through the door we were seeing you. But son, who was the boy sitting along with you? Do you know him?" He says, "Yes, this is his name." "Do you know? He doesn't belong to our caste. Tomorrow go to the principal, request and change your chair from there. Sit with somebody else. Because right now with whom you are sitting, he is not of higher caste." So the innocent child who doesn't have any barrier in his mind, who has no poisonous feeling, he is a good friend of that boy. They care and share with each other. They play with each other. And look what the elders have given him. Just make their own son in that tender age poisonous. So, is these the teachings of saints and sages? But out of ignorance, what we are doing is playing havoc. तो कहने का भाव यही है कि महापुरुषों ने संतों ने तो जाति पाति से ऊपर उठकर इंसान और इंसान के दरमियान एक दुनिया ख़त्म करके मिलवर्तन की स्थापना की ही प्रेरणाएं दी हैं. इसीलिए आज ब्रिजेस की बात हो रही है और दूसरी तरफ वॉल्स की बात हो रही है कि ये दीवारें मज़ो मिल्लत की जाति पाति की इन्होंने बांटा है, इन्होंने दूरियां बनाई हैं. लेकिन जो ब्रिज होता है, पुल होता है, वो हमें एक दूसरे के करीब लाता है. और इस प्रकार से जो कुर्बत हासिल होती है इंसान और इंसान की, वो जो नज़दीकत बनती है, वो तब बनती है जब दरअसल इंसान इस खुदा के नज़दीक होता है. द नियरनेस टू ह्यूमन बींग्स becomes possible if nearness to God is established. If we are near to God, we will be near to the human beings. In the true sense, if we love God, we often claim, "I love God Almighty." But love with God Almighty is proved by the love which we share with human beings. If we are fighting with our fellow beings and still claiming that we love God and we are religious people, it negates our claim, because God doesn't want that its children should fight each other. So the love which we have for ourselves, because everybody loves himself, he should give love to others. That's why the slogan which we often quote is "love all and hate none." तो परमात्मा के साथ नज़दीकत हो जाती है जिसकी, वो फिर इंसान इंसान के करीब हो जाता है, फिर उसकी दूरियाँ मिट जाती हैं, फिर वो वैर वास्तव से ऊपर उठ जाता है, फिर वो इस धरती को सजाता है प्यार के साथ, वो औरों को गले लगाता है और किसी को नीची दृष्टि से नहीं देखता है. क्योंकि नीची दृष्टि से देखने का मतलब अहंकार भी है, अभिमान भी है, अपनी जाति का, अपने मज़हब का, अपनी कौम का, अपनी किसी संस्कृति का, कल्चर का, किसी चीज़ का भी एक मान और अभिमान. तो वो भी रिफ्लेक्ट होता है. जब आप किसी को नीची दृष्टि से देखते हैं, इसका मतलब आप अभिमान भी कर रहे हैं. तो ये भी महापुरुषों ने एक नीच भावना मानी है जिसको अहम के भाव कहते हैं। ये उत्तम भाव नहीं माने गए हैं, ये नीच भाव माने गए हैं। तो इसलिए हम गिरावट के ही प्रमाण देते चले जाते हैं जब हम दूसरों को नीची दृष्टि से देखते हैं। तो यही दीवारों की बात हो रही है कि हम खामखा की दीवारें खड़ी करते चले जाते हैं, खामखा की दूरियां पैदा करते चले जाते हैं। चार दिनों की ज़िंदगी मालिक ने बख्शी है, ये चार दिन पलक झपकते ही बीत जाते हैं। ये ज़िंदगी हमारी हमेशा नहीं चलती रहने वाली है। ये संसार में जो आए हैं उन्होंने जाना भी है, कोई यहाँ हमेशा रहा नहीं है। तो इसलिए जो आए हैं तो जाएंगे, ये केवल और ही नहीं, हम सब जो आए हैं सब ने जाना है। इसलिए ये सीमित सा समय जो मालिक ने बख्शा है, इस सीमित से समय में क्या हम केवल नफ़रत ही करते रहेंगे, दीवारें ही खड़ी करते रहेंगे, एक दूसरे के प्रति विपरीत भाव ही रखते रहेंगे? क्या यही हमारी जीवन की चाल रहेगी? क्या यही हमारी सोच और भावना रहेगी? तो इसलिए इसको मोड़ देना ज़रूरी है, इसको सही दिशा देनी ज़रूरी है। ये एहसास आ जाना ज़रूरी हर किसी में कि ये चार दिनों की ही तो ज़िंदगी है, हम इसको क्यों ना सजाएं, इसको क्यों ना संवारें। और ये सजना और संवरना वो केवल प्यार के कारण ही संभव है, वो केवल कंपैशन के द्वारा संभव है, वो केवल एक दूसरे को सत्कार देने के द्वारा ही संभव है। इस तरह से हम अपने इस जीवन को एक सुंदर जीवन बना पाएंगे और ये जीवन जीवन कहलाएगा। ये जीवन भी जीवन तभी कहलाता है अगर हमारे मन के भाव उत्तम हैं, हमारे व्यवहार सुंदर हैं और हमारी भावनाएं जो हैं वो प्यार के आधारित हैं, प्यार पे आधारित हैं, तो फिर वो जीवन को भी जीवन मिल जाता है। तो इसीलिए वो भी एक पंक्ति जो दास अक्सर कोट करता है, लाइक आई ऑफन कोट अ लाइन दैट इफ़ यू सीज टू लव यू सीज टू लिव बिकॉज लविंग इज लिविंग, इफ यू आर नॉट लविंग देन यू हैव ऑलरेडी सीज टू लिव, ऑल्दो यू आर ब्रीदिंग, ऑल्दो यू आर स्लीपिंग एंड ईटिंग एंड अचीविंग सो मैनी वर्ल्डली थिंग्स, बट इन द ट्रू सेंस दैट लाइफ इज नॉट लाइफ विच इज डिवॉइड ऑफ लव। सो इफ द मोमेंट यू सीज टू लव देन यू हैव स्टॉप्ड लिविंग। So we have to give life to our lives. We have to give life to our lives which we are living. And so that's what the message is from the saints and sages from time immemorial. They had this common message, the common message of oneness, of brotherhood. And today also in this congregation, the same very message is once again being conveyed by so many saints who are strong believers that this world should become a better place to live in, that these distances should diminish and we should be one mankind, and that's what is required. So we have to shed all the narrow-mindedness and hatred towards each other and should respect each other, and so that we have a peaceful coexistence. We exist but peacefully, not with hatred but with love. Love is the fragrance, and this fragrance should engulf the whole of mankind, whole of this planet Earth, and there may be purity, and the environment is congenial, where everybody heaves a sigh of relief that yes, this atmosphere is not of fear, not of burden, not of violence. This atmosphere is of love, of caring and sharing. So that's hoped and wished and desired. May Nankar bless that such a realization, awareness takes place, so that we have this planet Earth, which is lived, which is being used in a proper way, and all people living in different nations, they live as one, beyond the barriers, beyond the boundaries, as one. So, without taking much of your time, because we have already arrived at that point where we should conclude this session, and words may go on and on and on, but the basic importance lies with what we grasp and what we adapt. So, just concluding in the end, once again, I express my happiness to be here in Mesa, Phoenix, Arizona, and I wish all the best to the inhabitants of Mesa and Phoenix, and for that matter, all the people of United States of America, and I pray for whole of mankind. Dhanyakar ji.